Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
So, कहते हैं कि उस परब्रह्म परमात्मा से अथवा इस आत्मा से, इन दोनों शब्दों को अब ध्यान रखिएगा। आकाशा आकाशा संभूता, आकाश की उत्पत्ति हुई। अब आकाश माने क्या है, तो भाष्यकार ने तो दोनों अर्थ कर दिए हैं। वो कहते हैं जिसका गुण शब्द है उसको आकाश बोलते हैं, माने आकाश के बिना शब्द का की स्थिति नहीं हो सकती। शब्द गुण वाला ये अपनी है, वेदांत की भी भाषा है, लेकिन मुख्य रूप से ये सांख्य की भाषा है। शब्द गुण वाला आकाश है, वाला। अब क्या चीज क्या है ये बात अलग रही, वाला ते तटस्थ लक्षण हुआ। अच्छा, शब्द अलग है और आकाश अलग है, लेकिन शब्द आकाश में रहता है। आकाश के बिना शब्द की स्थिति, आधार आधेय संबंध है। एक है जो सबको अवकाश दे, स्थान दे, जिसको आजकल स्पेस बोलते हैं, खाली जगह। अगर खाली जगह न हो तो हम और आप कहां बैठे, ये पहाड़ कहां समावे, धरती कहां समावे ना रहे। तो ये सब आकाश पाताल जितना भी सब दिखलाई पड़ रहा है, ये जिस पोल में दिखलाई पड़ रहा है उस पोल के ऊपर तो कभी कोई ख्याल ही नहीं करता। अच्छा देखो, मैं आपको देख रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूं, आंख मेरी बंद है, आंख मेरी खुली, आपको देखा, तो सबसे पहले आंख ने क्या देखा? हां, लेकिन वो प्रकाश ऐसा एक्जियोमेटिक हो गया है कि सबसे पहले देखते तो हैं हम प्रकाश को, लेकिन उसकी गिनती कहीं नहीं होती है। जिस चीज को देख रहे हैं उस प्रकाश से जो प्रकाशित हो रहा है, बस उसी को देखते हैं। न प्रकाश करने वाले के ऊपर निगाह जाती है और न बीच में जो प्रकाश कर रहा है जिसके बिना वस्तु नहीं दिख सकती है नारायण, न उसके ऊपर ध्यान जाता है। अच्छा, ये सूर्य का प्रकाश है कि बिजली का प्रकाश है, ये किस प्रकाश से देख रहे हो? है तो बोले कि वो तो मैं मुझ स्वात्म प्रकाश से ही देख रहे हो, मैं ना हूं तो कौन देखेगा? तो बोले मैं का मतलब क्या हुआ यहां, तो शरीरधारी, तो शरीर तो चाहिए ना। तो ये इस थॉट में, विचार में जो कमी है वो ये है कि शरीरधारी चेतन है और शरीर जो है ये जड़ है। अब जब ये इसमें से वो चेतन निकल जाता है, चेतना युक्त जो चैतन्य है, जब वो निकल जाता है अपने सर बोरिया बिस्तर समेट के ना रहे, मर जाता है माने शरीर, उस समय शरीर क्यों नहीं देखता है अगर शरीर ही देखने वाला हो तो? तो इसलिए देखने वाला शरीर नहीं है, शरीर के द्वारा देखा जाता है। ये तो द्वार है, लेकिन देखने वाला, ज्ञान करने वाला तो चैतन्य ही है। अब बोले कि नहीं, बीच में चिदाभास होना चाहिए। साक्षी तो संसार को साक्षी भाष्य मानते हो कि आभास भाष्य मान? अब ये थोड़े टेक्निकल बातें हैं। माने चिदाभास के द्वारा संसार दिखलाई पड़ता है या आत्मा के द्वारा ये संसार दिखलाई पड़ता है? तो जो चिदाभासी लोग हैं, माने उस सिद्धांत में ही जो आग्रह करने वाले हैं, वो कहते हैं कि बिना चिदाभास के संसार नहीं दिख सकता है। लेकिन अपना जो एक जीववादी सिद्धांत है वेदांत में, उसमें तो नारायण सब साक्षी भाष्य ही है, आभास भाष्य कुछ है ही नहीं। चिदाभास को किससे देखते हो? चिदाभास से तो दुनिया दिख रही है, लेकिन चिदाभास किससे दिख रहा है? तो वो तो साक्षी के द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है, इसलिए सबको साक्षी ही देखता है। ये बात एक दफे विचार करके साक्षी में लौट आना चाहिए, फिर ये भ्रम नहीं होगा कि शरीर चाहिए, इसकी आवश्यकता है। जब तक ये आवश्यकता महसूस करते रहेंगे, तब तक कर्ता भोक्ता प्रमाता इसी दुनिया में घूमते रहेंगे। तो कहते हैं कि आकाश जो है उस परमात्मा से ये आकाश पैदा हुआ, ब्रह्म से, या इस आत्मा से यह आकाश पैदा हुआ। महाराज श्री कहते हैं कि सृष्टि की दो संगतियां हैं। एक संगति तो है उससे, तो क्यों जी क्या हुआ ब्रह्म में? चुपचाप पड़ा हुआ था तो कहां पड़ा हुआ था? ये भी तो है ना उपनिषदों में, सह एकाकी न रमत है, उसका मन नहीं लग रहा था भगवान का, तो बहुत श्याम प्रजाए उसने कामना की, सो अकामयत कामना की उसने, मन ने स एकाकी न रमत, अकेला था बेचारा, तो रमण उसको सुख नहीं हो रहा था। अब वहां तो नारायण मूल उपनिषद में यह है, जाया में स्यात, इस समय मेरे पास मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। तो भाष्यकार ने लिखा है कि ये प्रमाण के अंतर्गत श्रुति नहीं है, ये अनुवादक श्रुति है, क्योंकि संसार में अकेले लोगों का मन नहीं लगता है, इसीलिए तो दुकेले होते हैं नारायण, और क्या बात है। अरे इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे काटोगे? तो दो हो जाओ। अब वो दो क्या होते हैं? फिर तो अनेकता की तैयारी होती है, तो वो फिर जी का जंजाल बन जाता है। तो वही बात वहां भगवान के लिए बोल दी कि ब्रह्म का जी नहीं लग रहा था, तो उसने कहा कि सृष्टि होनी चाहिए। तो एक संगति तो यह है कि उस ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, तो कुछ तो उसमें हलचल हुई होगी। तो शैव वालों ने मान लिया, कश्मीरी शैव वालों ने, कि स्पंद ही तत्व है, माने स्पंदन उसमें स्वाभाविक है, और स्पंदन हुआ आकाश की उत्पत्ति हो गई। स्पंदन माने फुरफुराहट, हम लोग बोलते हैं स्फुरण, वो लोग बोलते हैं स्पंदन। तो स्फुरण ज्ञान की दृष्टि से बोला जाता है और क्रिया की दृष्टि से स्पंदन बोला जाता है। तो वो शिव शक्ति मानते हैं इसलिए वो स्पंदन बोलते हैं, और हम तो सिर्फ ज्ञान ही मानते हैं इसलिए उसको स्फुरण बोलते हैं। एक ख्याल आया सृष्टि बहुश्याम प्रजा स क्या है, तदैक्षत, उसने ईक्षण किया माने संकल्प किया, संकल्प करते ही सृष्टि हो गई। तो ये सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। तो चाहे इसे आकाश माने पोलम पोल मानो, सबको अवकाश देने वाला, और चाहे शब्द गुण वाला मानो, दोनों बात ठीक है। दूसरी प्रकार की जो आत्मा की संगति है वो आत्मना आकाश संभूता, इस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति होती है। बोले ये कहां देखी आपने आकाश, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति? तो नारायण स्वप्न में आप आकाश मालूम पड़ता है कि नहीं? सारी चीजें वहां भी ऐसे ही पोल में रखी हुई मालूम पड़ती हैं जैसे जागृत अवस्था में मालूम पड़ती हैं। तो वो जो सपने का आकाश था वो कहां से निकला? तो बोले वो मन में से निकला, वहां आत्मा मन रूप से ही बैठा रहता है। तो प्रतीति को प्रतीति की दृष्टि से जब विचार करते हैं तब तो कहते हैं कि आत्मा से सृष्टि हुई, और वस्तु की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब कहते हैं उस ब्रह्म से सृष्टि हुई। अब एक जादूगर ने जादू का खेल दिखलाया तो लाइट चारों तरफ लाइट हो गई। अब लिखा है नारायण बाइबल में कि सबसे पहले लाइट ही थी, ये भी लिखा है कि पहले शब्द ही था, इन द बिगिनिंग देयर वॉज द वर्ड, और वो क्या है फाइट लक्स, फाइट बोलते हैं उसे क्या अंग्रेजी का उच्चारण जो भी हो, प्रकाश, उससे सृष्टि हुई। तो प्रकाश माने ज्ञान समझ लो, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा से सृष्टि हुई और सत स्वरूप ब्रह्म से सृष्टि हुई, दोनों बातें दोनों प्रक्रियां स्वीकार्य हैं। जब हम कहते हैं सत्य स्वरूप ब्रह्म से सृष्टि हुई तो ये सारा संसार सत्य मालूम पड़ने लगता है। जब हम कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा से सृष्टि हुई तो ये सब संसार जो है ज्ञेय मात्र प्रतीति मात्र रह जाता है, इसमें ठोसपना जो है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन सृष्टि तो हुई, कारिकाकार कहते हैं मांडूक्य कारिका, बोले भाई सृष्टि चाहे मिथ्या हो और चाहे सच्ची हो, भूततो अभूततो वापी, चाहे तो वो सृष्टि हुई हो चाहे सृष्टि न हुई हो, चाहे झूठी हुई हो चाहे सच्ची हुई हो, लेकिन बात तो ऐसे ही बतानी पड़ेगी जैसे कि संसार में लोगों की समझ में आती है। तो महर्षि ने एक दृष्टांत सुनाया, बोले कि इनके ऊपर अलीपुर बॉम्ब केस जब चला था कलकत्ता में अंग्रेजों के टाइम की बात, उसी में ये अरविंद घोष जी पकड़े गए थे। तो पुलिस ने एक गवाह तैयार किया, अब पुलिस के गवाह तो तैयार किए हुए होते हैं ना, तो उसको ये बताना था कि मैंने इनको बम बनाते हुए देखा और बम फेंकते हुए भी देखा। तो अब वो गवाह के कटघरे में खड़ा हुआ पुलिस का, तो सामने वाला जो वकील था विपक्ष का माने बचाव पक्ष का, तो उसको ये मालूम पड़ गई कि पुलिस ने इसको रुपए दिए हैं तो इसलिए गवाही दे रहा है। तो उसने मालूम किया तो मालूम पड़ा कि 5000 रुपए इसको दिए गए इस बात को बोलने के लिए। अब वो जो विपक्ष का वकील था उसने सामने खड़े होकर ऐसे दोनों हाथ कर दिए, माने 5 तो तुझे मिली गए भाई और हम 10 देंगे, सावधान गवाही ठीक देना। अब उसके मन में लालच आ गया तो प्रोसिक्यूटर जो था उसने पूछा कि तुमने इनको बम बनाते देखा? बोले हां देखा हजूर। तो बोले क्या देखा? अब बताने लगे कि उसके पास ये रखा था ये रखा था ये रखा था। तो फिर तुमने पार्लियामेंट में इसको बम फेंकते हुए देखा? बोले हां देखा सरकार। तो जज बोला कि उसके बाद क्या हुआ, तुम कहां खड़े थे? तो बोले बम की इतनी जोर की आवाज हुई सरकार कि मेरी नींद खुल गई। बोले तो क्या तुम अपना सपना सुना रहे थे कि और क्या? मैंने तो सपने में देखा था इनको बम बनाते हुए, मुझे नहीं मालूम कि ये बम बनाते हैं कि नहीं बनाते। वो बात पलट गई सारी की सारी। तो सृष्टि की जो प्रक्रिया होती है शास्त्र इसको अध्यारोप बोलते हैं। अध्यारोप तो जैसे बात समझ में आ जाए वैसे ही किया जाएगा, वो सच्ची है कि झूठी है इसमें उसका तात्पर्य नहीं होता है, बात समझाने में ये तात्पर्य है। तो मिथ्या को भी ऐसे ही बोलेंगे जैसे सच्ची हो रही हो और सच्ची को भी ऐसे ही बोलेंगे जैसे सच्ची, क्यों? बात तो हम वही समझते हैं जो सच्ची घटना जैसे होती है। तो ये आकाश की उत्पत्ति कैसे हो गई, तो बोले कि जैसे स्वप्न में आकाश मालूम पड़ने लगता है, बस ऐसे ही मालूम पड़ने लगा। क्या मालूम पड़ा? तो पोलम पोल मालूम पड़ा। अब देखना जरा, ये भी एक मजे की बात है। एक दफे महाराज श्री के पास सत्संग चल रहा था, तो उन्होंने कहा अच्छा ये सोच लो कि तुम्हारा शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा। अब बोले धरती दिखाई दे रही है? बोले धरती से भी चित्त हटा लो, पृथ्वी नहीं है, शरीर नहीं है, अब क्या है? पृथ्वी नहीं है तो पृथ्वी के ऊपर जो जल दिखलाई पड़ता है वो दिखाई पड़ेगा? जल भी गया। वो जल नहीं है तो क्या अग्नि दिखलाई पड़ेगी? फिर क्या वायु दिखलाई पड़ेगा? अब देखो क्या वो पोलम पोल दिखलाई पड़ेगा? ये पोल जो हमको दिखलाई पड़ता है, ये इनकी बाउंड्रीज दिखलाई पड़ती है ना कमरे की, तो कमरे की दीवालों के कारण कमरे के भीतर का पोल हमको मालूम पड़ता है। अगर धरती में कर्वेचर ना हो और हम धरती पर ना खड़े हो, फिर आप देखो कि आपको आकाश दिखलाई पड़ता है क्या? तो आकाश जो है वो दृश्य नहीं है, एक स्फुरण का ही नाम आकाश है। तो या तो ऐसे मानो, आत्मा से मानोगे तो स्फुरण और प्रतीति के अलावा आकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है। और अगर आप ये समझो कि उस ब्रह्म से ये सृष्टि हुई, तो जैसे वो सच्चा था नारायण, ऐसे ये भी सच्चा है। फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वो भी सच्ची है। सब सच्ची 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 सच्ची, धरती तक सच्ची आ गए, शरीर में सच्ची आ गए, तो सारी सृष्टि सत्यवत प्रतीत होने लगेगी। और अगर प्रतीति के हिसाब से देखोगे तो आकाश भी प्रतीति, उसमें वायु चल रही है ये भी प्रतीति, उसमें अग्नि आ गई ये भी प्रतीति, सब अंत में जाकर शरीर भी प्रतीति मात्र ही रह जाता है। अब श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने एक बात अपने एक ग्रंथ में लिखी है, तो किसी ने कहा हमारा सृष्टि तो सच्ची हो गई ना, तस्मात वा ये तस्मात आत्मा ने आकाश असंभूता, उस परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। तो बोले अब आकाश तो समझ में आ गया ना, क्या क्या समझ में आया? बोले आकाश माने पोलम पोल, और पोलम पोल ये प्रतीत क्यों होता है? कि ठोसम ठोस के कारण। अगर ये ठोसम ठोस न दिखे तो वो पोलम पोल भी न दिखे। तो बोले ठीक है, आकाश माने कुछ नहीं। तो सबसे पहले परमात्मा से क्या पैदा हुआ? तो बोले कुछ नहीं पैदा हुआ। बोले फिर आकाश से क्या पैदा हुआ? कि वायु पैदा हुआ। बोले कुछ नहीं से पैदा हुआ ना। तो आगे क्यों बढ़ते हो? उस कुछ नहीं पे ही डटे रहो ना, कुछ पैदा नहीं हुआ। अब ये बातें जो हैं किताबों में आपको नहीं मिलती हैं, महात्माओं के सत्संग से ये बातें मिलती हैं। जब आप कुछ नहीं अनुभव होएगा, तो ये कुछ नहीं किसको मालूम पड़ रहा है? क्या कुछ नहीं जिसको मालूम पड़ रहा है वो भी कुछ नहीं है क्या? तो श्रुति जो है वो पहुंचाना तो यहां चाहती है, अब उसकी प्रक्रिया जो है वो अपने अपने ग्रंथों की अलग अलग ढंग की है। अब यहां पांच भूतों की प्रक्रिया बता रहे हैं। यहां एक बात सुरेश्वराचार्य जी ने और लिखी है, वो कहते हैं कि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है और उसमें किसी प्रकार से अन्य की गुंजाइश नहीं है, कुछ और होगी हो ब्रह्म के अलावा, उसमें ब्रह्म में ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, एक मेवा द्वितीयम। तो अब ये सृष्टि कहां से पैदा हो गई? ब्रह्म में तो नारायण बिना माया स्वीकार किए हुए ब्रह्म में किसी भी सृष्टि का अध्यारोप भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा एक जादूगर ने एक हीरा बनाया, जादू से हीरा बनाया, तो बहुत बड़ा हीरा था देखने में। अब जो हीरा के पारखी थे उन लोगों ने कहा तो बड़ा कीमती हीरा। तो उसने पूछा कि आप में से कोई इस हीरे को चाहे तो मैं दे सकता हूं, तो हाथ उठाइए कौन कौन चाहते हैं। तो बहुत लोगों ने हाथ उठा दिए, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं। बोले अभी थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। तो पहले 10-5 हाथ उठे, अब उसके बाद उसने दूसरा खेल दिखलाया, उसमें एक बड़ी सुंदर लड़की दिखलाई। बोले ये मेरी बेटी है और ये अब विवाह के योग्य हो गई है, अब आप में से कौन इसके साथ विवाह करना चाहते हैं। तो पहले मान लो 10 हाथ उठेते हैं, तो 20 हाथ उठ गए। हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम चाहते। बोले रुकिए जरा। उन्होंने कहा जो मेरी इस लड़की से विवाह करेगा उसको मैं ये हीरा मुफ्त में दहेज में दे दूंगा। अब आप बताइए कौन आप में से कौन स्वीकार करे। अब लोगों को होश आया कि ये हीरा भी जादू का और ये लड़की भी जादू की। तो वो जो हम अपने आप को तो जादू का मान नहीं रहे, इनकी जादू की चीजों को लेकर के क्या होगा। तो जितने हाथ उठे हुए थे वो सब डाउन हो गए नारायण, कोई उनको लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये जो सृष्टि मालूम पड़ रही है ये जादूगर की सृष्टि है, इसमें माया बीच में लाए बिना ब्रह्म से सृष्टि की संगति नहीं लग सकती। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात मायनम तु महेश्वरः, ये भी श्रुति है। जिसको हम प्रकृति प्रकृति बोलते हैं वो असल में माया है, जादू का खेल है। और जो ईश्वर जिसको हम लोग बोलते हैं वो मायनम माने मायावी जादूगर है। जादूगर खेल दिखाता रहता है, तो कभी उसने आकाश का खेल दिखला दिया, कभी वायु का खेल, कभी पांचों का खेल दिखा दिया, कभी नारायणी शरीर का खेल दिखा दिया। अब बोलो सृष्टि सत्य है कि मिथ्या है। तो भाई सृष्टि को सत्य कहो तो वो कहते नहीं बनता, क्योंकि मालूम पड़ रही है नहीं, मतलब हमारे देखते देखते ही नष्ट हो जाती है। और मिथ्या कहो तो भी नहीं मालूम, क्योंकि मालूम पड़ रही है। मिथ्या भी कहते नहीं बनता, सत्य भी कहते नहीं बनता। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने एक नया शब्द कॉइन किया, बोले अनिर्वचनीय। ये सृष्टि जो है ये अनिर्वचनीय है, इसको आप सत्य भी नहीं कह सकते हो, असत्य भी नहीं कह सकते हो, लेकिन इसके व्यावहारिक सत्ता आपको स्वीकार करनी पड़ती है। बस व्यवहार कर लो नारायण। 15 दिन के लिए हम प्रेमपुरी को अपना प्रेमपुरी बोल रहे हैं, अपने कमरे को अपना कमरा बोल रहे हैं, तो वहां की जितनी सामग्री है उसको अपनी सामग्री बोल रहे हैं, लेकिन मालूम है कि 15 दिन बाद चले जाना है। तो जैसे 15 दिन के लिए यहां आए हैं वैसे ही ये जो संसार रूपी प्रेमपुरी है ना, ये भी प्रेमपुरी है ही, तो इसमें कितने दिन के लिए आए हैं? कोई 100 वर्ष ज्यादा से ज्यादा, पूरी आयु 100 वर्ष की मानी गई, 100 पे भी नहीं पहुंचते लोग। तो 100 वर्ष के लिए मान लो इन्हें मेरी भी बोलो तो कोई हर्ज नहीं है, और है बोलो तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जादू का खेल है, ये बात तो आपको पहले मन में धारण करनी पड़ेगी। तो सुरेश्वराचार्य जी ने कहा के बीच में माया मानो। ये तस्मात वा ये तस्मात आत्मने आकाश संभूता, ये भाष्यकार ने माया शब्द का प्रयोग नहीं किया है भाष्य में, सुरेश्वराचार्य जी ने ये अपनी व्याख्या में बात लिखी है कि वो ब्रह्म, ब्रह्म में एक अध्यारोप माया का और फिर माया सहित ब्रह्म में अध्यारोप आकाश का। अभी एक मिनट है तो बात पूरी कर देता हूं। अब आकाशात वायु, ब्रह्म से वायु पैदा हुई ये नहीं कह रहे हैं, आकाश से वायु पैदा हुई। जैसे बाप से बेटा हो गया, अब बेटे से जो बेटा होगा वो पहले वाले बाप से थोड़ी पैदा होगा, उस बेटे बेटा बाप से पैदा होगा। तो आकाश से वायु पैदा हुई का क्या मतलब है कि आकाश रूप जो ब्रह्म है, आकाशावच्छिन्न चैतन्य से वायु की उत्पत्ति हुई, फिर वायु अवच्छिन्न चैतन्य से अग्नि की उत्पत्ति हुई, फिर अग्नि अवच्छिन्न चैतन्य से जल की उत्पत्ति हुई, फिर तदवच्छिन्न चैतन्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, फिर उससे हमारे शरीर आदि की उत्पत्ति हुई। ये सृष्टि का क्रम है। शेष चर्चा फिर। हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।